ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळैयाडल पुराण की 13वां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
एपिसोड 13। बच्चों, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, भगवान शिव जी आशुतोषी हैं और बहुत आसानी से भक्तों के संकट को दूर करते हैं। उनकी सब लीलाएं मूल रूप में यही समझाती हैं कि उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। खासकर मदुरई में अपने ही द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य धर्म मार्ग में चले, इस पर वे बहुत ध्यान देते थे। अगर एक राजा भी धर्म से भ्रष्ट होता तो उसे सही मार्ग में लाना अपना कर्तव्य समझते थे। उसी का एक और उदाहरण है उनकी अगली लीला। आज की कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे शिवजी ने वरगुण पांडियन नामक राजा को ब्रह्महति दोष से मुक्त किया। वरगुण पांडियन एक बार शिकार करने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। शाम ढलने लगा और राजा अपना महल लौट रहा था। सायंकाल का समय था और रोशनी कम थी। एक पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण सो रहा था। दौड़ते आ रहे राजा के घोड़े ने नीचे पड़े रहे ब्राह्मण के ऊपर पांव रखकर उसे कुचल दिया। पांडियन बहुत पछताया। महल में आकर ब्राह्मण के पुत्र को भरपूर क्षतिपूर्ति दी। उसका मन शांत नहीं हुआ, अपनी तरफ से बहुत प्रायश्चित भी किया। मंत्रीगण, मुनिजन और महात्माओं से सलाह लेकर बहुत सारे सत्कार्य किए, फिर भी वह ब्रह्महति दोष से मुक्त न हो पाया। भगवान शिवजी से राजा की अवस्था देखा न गया। वे राजा के सपने में सिद्ध पुरुष के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम चोल देश पर आक्रमण करके विजय पाओ और तिरुविळैमरुदूर जाओ। वहाँ हम मल्लिकार्जुन के नाम से जाने जाते हैं। तुम पूर्व की ओर से मंदिर के अंदर जाओ। ब्रह्महत्ति दोष उस मंदिर में घुस नहीं पाएगा। आते समय पश्चिम द्वार की तरफ से लौट के आना। वरगुण पांडियन ने वैसे ही किया। तिरुविळैमरुदूर के शिव मंदिर के पूर्व द्वार से अंदर जाते ही उसे लगा वह अब मुक्त हो गया है। गर्भगृह में मल्लिकार्जुन भगवान को देखते ही पहचान लिया कि उसका इष्ट देवता ही वहाँ पर विराजमान है। उसने भगवान से पूछा, अगर दोनों जगहों में आप ही हैं, तो मुझे यहाँ तक आने का कष्ट क्यों दिया? अशरीरी वाणी बोली, मैं ही सभी देश में हूँ, लेकिन हर प्रदेश और क्षेत्र की एक महिमा है। यहाँ पर ब्रह्म राक्षस का आना मना है। राजन, वैसे भी तुम राजा हो, इसलिए कहीं भी जा सकते हो। दूर दूर से आम जनता कैसे मदुरई या तिरुविळैमरुदूर आ सकते हैं? अब तुम पश्चिम के द्वार से मदुरई लौट जाओ। वरगुण पांडियन को बहुत आनंद हुआ और उस मंदिर के विस्तार में बहुत कुछ कार्य किया और तृप्त होकर मदुरई लौट चला। एक दिन वरगुण पांडियन भक्ति प्रवाह में इतना डूब गया कि जीते जी उसने कैलाश और शिवलोक को देखना चाहा। शिवजी बहुत खुश होकर उस मंदिर को ही कैलाश में बदल दिया और नंदीदेव के साथ और सभी देवताओं का दर्शन करवाया। राजा को इतना आनंद हुआ कि वह अब इस देह में ही नहीं रहना चाहा, सदा कैलाश का अनुभव करना चाहा। वहीं पर उसने विदेह मुक्त पा लिया। बच्चों, हमारी संगीत कला भी एक दैवी कला कहा जाता है। भक्ति और संगीत दोनों अभिन्न हैं। हमारे यहाँ कई महापुरुष हैं जो संगीत के माध्यम से ही भगवान को पाया है। शिवजी ने भी ऐसे भक्तों पर दया दिखाई है जिन्होंने उन्हें भक्ति संगीत से आराधना की है। ऐसी ही और एक कहानी है। वरगुण पांडियन के काल में ही एमनाथन नामक एक संगीतज्ञ चोल देश से आया। संगीत विद्या का तो वह बड़ा ज्ञानी था और सरोद वादन में भी निपुण था। मित्रों, हम आपको समझाने के लिए सरोद कर रहे हैं। वास्तव में उस जमाने में सरोद जैसा एक वाद्य था जिसको यार्ड कहा करते थे। उस काल में यह वाद्य बहुत ही प्रसिद्ध था। आजकल यह बजाया नहीं जाता है, तो एमनाथ का संगीत सुनकर राजा बहुत आकर्षित हो उठा। पराये देश के कलाकार होने के बावजूद उन्होंने एमनाथ का बहुत सम्मान किया। कुछ और दिन अपनी अतिथि बनकर रहने का आमंत्रण भी दिया। इस सम्मान से एमनाथ बहुत अभिमानित हो गया। उसके देश का राजा भी उसे इतना सम्मान नहीं किया था। उसको इतना गर्व हो गया कि आने जाने वालों से पांड्य देश को अपमानित करने लगा। लोगों को बहुत लज्जा हुई। राजा के कानों तक यह बात पहुंची। राजा ने कहा, क्यों हमारे देश में एक भी कलाकार नहीं है जो एमनाथ जैसा विद्वान हो, जो एमनाथ को प्रतियोगिता में जीते। बाणभट्ट नाम का संगीतकार बड़ा शिवभक्त था। उसने कहा, राजन अगर शिवजी की कृपा हो तो मैं प्रयत्न करूंगा। राजा ने अनुमति दी। जब बाणभद्र एमनाथ के घर से जा रहा था, तब एमनाथ के शिष्य अभ्यास कर रहे थे। उनका गायन इतना मधुर था कि बाणभद्र सोच में पड़ गया। अगर शिष्य वर्ग इतना अच्छा गाते हैं, तो गुरु का क्या कहना। मुझे इस चुनौती का स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अगर मैं हार जाता तो वह पूरे पांड्य देश का हार माना जाएगा। अब मैं क्या करूं? भगवान शिव के अलावा और कोई मुझे और इस पांड्य देश को बचा नहीं सकता है। सोचते सोचते मंदिर तक आ गया और शिव जी से बहुत प्रार्थना की। दिन ढलने लगा, सायं हो गया। एमनाथ खिड़की के पास बैठकर आराम कर रहा था। तभी एक लकड़हारा ठीक उस खिड़की के सामने आकर बैठ गया। वह बहुत थका मारा था। एक लंबी जंभाई लगाई, ऐसे ही लेट गया और कुछ भजन गुनगुनाने लगा। उसके कंठ से निकले स्वर बहुत ही सुमधुर था। पूरा वातावरण बदल गया। जानवर पास आकर खड़े हो गए। पक्षियां और भौरे भी हल्की स्वर में गुनगुनाने लगे। हवा के झोंकों से फूलों से मनमोहक सुगंध फैलने लगा। एमनाथ को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा दिव्य गान उसने कभी भी सुना नहीं था। अचानक जब क्षण भर के लिए गाना बंद हो गया, तब सारा वातावरण भी स्तब्ध हो गया। वायुमंडल में कोई गति या संचार नहीं रहा। मानो पूरा ब्रह्मांड अचल हो गया हो। अगले क्षण जब गाना फिर से आरंभ हुआ, तो वातावरण में भी जान आई। एमनाथ स्वयं उस लकड़हार से पूछा, तुम कौन हो? देखने में इतना गरीब लगते हो, मगर ऐसा दिव्य संगीत कहाँ से सीखा? लकड़हार ने ग्रामीण बोली में कहा, मैं तो लकड़ी काटने वाला हूँ। हर दिन बाणभद्र के घर के सामने से जाता हूँ। मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है, उनसे सीखना चाहा, लेकिन उन्होंने सिखाने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि मैं बेसुर गाता हूँ। बाणभद्र तो संगीत के तपस्वी हैं। बस एक या दो गाना जो कान में पड़ा, उसे मैं अपने गधे जैसे कंठ से गा लिया। आप तो संगीत के सम्राट हैं। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर वह चला गया। अब सोच में पड़ने की बारी एमनाथ की थी। उसने यही सोचा कि अगर इस शहर में एक लकड़हार इतना अच्छा गा सकता है, तो बाणभद्र कितना बड़ा विद्वान होगा। अपने शिष्यों के साथ रातों रात भाग गया। बच्चों, सही अनुमान लगा लिया ना? वह लकड़हार भगवान शिव ही थे। अगली कड़ी में मिलेंगे।